श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। करते हैं भगवान से, हे ईश्वर अपना दर्श दिखला दो। प्रार्थना करते हैं आराध्य देव से, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आंखें बिछाए बैठा हूं आपके शुभ दर्शन के लिए। जब भक्त के हृदय में भगवान के लिए प्रेम बढ़ जाता है, भक्त को कुछ और नहीं सोचता, केवल अपने ईश्वर को देखना चाहता है, संभाषण चाहता है, बात करना चाहता है, स्पर्शम चाहता है, छूना चाहता है, दर्शन या दर्शनम दर्शन चाहता है। कहते हैं भगवान के दर्शन से, उनको स्पर्श करने से, उनसे बात करने से जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि क्षण भर का दर्शन ही काफी है। आपको पता है एक ऋषि पत्थर पे बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था, परमात्मा को पाने की चाह थी, कड़ी तपस्या, गर्मी के दिनों में पहाड़ी पत्थर तप जाता है, जल उठता है, भभक उठता है, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, कड़कती गर्मी में, जब सूर्य की किरणें अग्नि बरसा रही होती हैं, वह तपस्वी टस से मस नहीं होता, अपने शरीर को जला रहा है, दूसरी ओर एक और तपस्वी, एक और सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, वह भी तपस्या कर रहा है, वह भी भगवान के ध्यान में है, भगवान को पाना चाहता है, जैसे कि हम सब लोग अपने जीवन में अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार से दोनों सन्यासी, दोनों तपस्वी परमात्मा को देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं अपने अपने तरीके से। कहते हैं उस जंगल में से या उस जगह में से एक बार नारद मुनि जा रहे थे, नारायण नारायण, दो तपस्वी बैठा हुआ था पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर, वह नारद जी को पहचान गया, बोला हे नारद, नारद जी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मुझे आपके दर्शन हुए, मेरा सौभाग्य है, जब आप वैकुंठ धाम जाएंगे भगवान नारायण के पास, मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर लेते आइएगा। बस नारद जी बोले क्या प्रश्न है भाई? नारद जी आप तो सर्वज्ञानी हैं, फिर भी पूछ रहे हैं तो बता देता हूं। केवल नारायण भगवान से ये पूछना कि मेरे को दर्शन कब देंगे, मैं तड़प रहा हूं उनके दर्शन के लिए। नारद जी बोले ठीक है मैं वैकुंठ जाऊंगा नारायण से आपके प्रश्न का उत्तर पूछ के लेता आऊंगा। दूसरी ओर जो ऋषि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था उसने भी प्रश्न पूछ डाला, प्रभु मेरा भी एक प्रश्न है। भगवान नारायण से अनुरोध कीजिएगा मुझे दर्शन दें। कृपा मुझे बताइए कब मेरा सौभाग्य खुलेगा, मुझे नारायण के दर्शन होंगे। मुनिवर बोले ठीक है जब मैं वैकुंठ जाऊंगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी लेता आऊंगा। कई दिन बीत गए, बहुत समय बीत गया। दोनों ऋषि अपने अपने तरीके से अपनी साधना में व्यस्त रहे। काफी समय के पश्चात नारद मुनि वहां से फिर गुजर रहे थे जब पत्थर पर ऋषि बैठा हुआ था, वह भागा उनकी ओर। नमस्कार हम नारद जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम पहुंचे, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर लाए आप? नारद जी बोलते हाँ मैंने भगवान नारायण से पूछा था कि आपको दर्शन कब देंगे। उन्होंने कहा कि आपको 20 वर्ष और तपस्या करनी होगी। यह सन्यासी बुखला गया, क्या बात करते हैं आप, मेरे को तपस्या करते हुए 20 वर्ष तो गुजर ही चुके हैं। और 20 वर्ष, मैं 40 वर्षों तक तपस्या करूंगा, मैं ये चट्टान पे बैठा रहूंगा अपने शरीर को जलाता रहूंगा, उसके बाद भी क्या पता नारायण आए या ना आए, दर्शन दे या ना दे। मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, अपनी पत्नी को बच्चों को छोड़ के आ गया, समाज को छोड़ के आ गया, जीवन के सारे सुखों का मैंने त्याग कर दिया। मैं सुबह से शाम तक इतनी कड़कती धूप में, अग्नि बरसाते हुए धूप में तपते हुए पत्थर के ऊपर बैठ के अपने शरीर को जलाता और नारायण को पुकार रहा हूं, और नारायण के कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती। और ऊपर से कह रहे हैं 20 साल और तपस्या करो। तब तक मैं रहूं या ना रहूं क्या पता। नारद जी ये बात ठीक नहीं है। नारद जी बोले मैंने तो केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया, हुबहू जैसे ही नारायण जी ने बताया वैसे मैंने आपको बताया पुत्र। मैं जा रहा हूं सब तपस्या को छोड़ के, मैंने अपने जीवन के 20 वर्ष खराब कर डाले हैं, व्यर्थ हो चला गया मेरा समय। मैं जा रहा हूं संसार में अपने परिवार के पास, सुख और चैन के जीवन जीऊंगा। नारद जी सक पका गए, सोचने लगे थोड़ा आगे जाने के बाद एक दूसरा सन्यासी है जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था पिछली बारी, उसके प्रश्न का उत्तर तो और भी खतरनाक है। अच्छा हो कि मैं वहां जाऊं ही नहीं, उनको मैं कोई बतलाऊं ही नहीं, नहीं तो वह भी तपस्या छोड़ के भाग सकता है। नारद जी कन्नी काट के वहां से जा रहे थे। संयोग की बात है कि वो सन्यासी गंगा में स्नान करके उसी रास्ते से वापस जा रहा था, सामने से नारद जी मिल गए, उन्हें नारद जी को प्रणाम किया, मुस्कुराते हुए नारायण जी से बोला, आपके दर्शन हुए मेरा सौभाग्य है। कितने जन्म के पुण्य के बाद आपका दर्शन प्राप्त होता है। उनको जलपान देने का प्रयत्न किया तो मंडल से जल पिलाया, आसन दिया, उनके चरणों को धोया। अब नारद जी सोचे ये मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं और मैं को जो उत्तर दूंगा तो इसके विपरीत है। कुशल मंगल पूछने के बाद नारद जी को फल खिलाने के पश्चात, जलपान देने के बाद, थोड़ी सेवा करने के बाद उनसे पूछे बैठे, मेरे नारायण कैसे हैं? नारद जी बोले, ठीक है। अच्छा, क्या कभी आपको मौका मिला उनसे पूछने का? मेरा आपने प्रणाम कहा था उनको, मेरा अभिनंदन दिया था? नारद जी बोलते, हाँ। नारद जी सोचने लगे कि इससे पहले ये आगे बोले मैं खुद ही बता दूं इसको। देखो सन्यासी, मैं आपका बताना तो नहीं चाहता था लेकिन बताना पड़ेगा। नारायण जी ने कहा था, जितने इस वृक्ष में पत्ते लगे हुए हैं, जितने इस पेड़ में पत्ते हैं, पत्ते कितने होते हैं पेड़ के ऊपर आप विचार कीजिएगा, कभी आपने गणना नहीं की होगी। हजारों लाखों पत्ते हो सकते हैं वृक्ष के ऊपर। और नारद जी यह कह रहे हैं, जितने इस वृक्ष पे पत्ते हैं उतने जन्मों की साधना के बाद नारायण आपको दर्शन देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला सन्यासी जो चट्टान पे बैठा था, पत्थर पे बैठा था, उनको कहा गया था 20 वर्ष की और तपस्या है, उसके बाद नारायण आपको दर्शन देंगे। वो सन्यासी ये सुनकर चला गया, भाग गया। इस सन्यासी से बोला कि जितने इस वृक्ष पे पत्ते लगे हुए हैं इतने जन्मों के बाद नारायण आपके सामने आके आपको दर्शन देंगे। कहते हैं वह सन्यासी उछल पड़ा, नाचने लग गया, गाने लग गया, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वाह जी वाह, खुशी का माहौल बन गया, नाचने लग गया, मुस्कुराने लग गया, इतना प्रसन्न हुआ कि मेरे नारायण मेरे को दर्शन देंगे, मुझे और क्या चाहिए, बस इतने जन्मों के बाद, 2,000, 5,000, 10,000 जन्मों की तपस्या के बाद मुझे नारायण के दर्शन हो गए, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। नारद मुनि हैरान रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी ओर वो ऋषि, वो सन्यासी जो पत्थर पे बैठा है, उसको कहा था कि 20 वर्ष की तपस्या के बाद आपको नारायण दर्शन देंगे, वह तो भाग गया संसार में। और इन्हें कहा कि जितने वृक्ष के ऊपर पत्ते हैं उतने जन्मों की कठोर तपस्या के बाद नारायण दर्शन देंगे। ये उछल रहे, कूद रहे, प्रसन्न हो रहे, कम से कम मेरे नारायण ने मुझे पहचाना तो सही, कम से कम मेरे नारायण ने मेरे बारे में सोचा तो सही, कम से कम मेरा नाम उनकी किताब में तो है, उनके मन में तो है। उन्होंने इतना तक कहा मेरे को दर्शन देंगे, इतनी तो मेरे को उन्होंने बात बता दी है। विचार कीजिएगा, ऋषि की बाछे खिल गई, प्रसन्नता में नाच रहा है, अचानक वहां पर एक प्रकाश चमका,
आसमान से फूलों की वर्षा होने लग गई। देवी देवता वहां खड़े हुए, देखा भगवान नारायण वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने साक्षात दर्शन दे दिए इस ऋषि को।
नारद जी हैरान, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मेरे को तो नारायण ने कहा था कि जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद इन कठोर तपस्या के बाद इनको दर्शन दूंगा, लेकिन क्षण भर में आ गए, मेरे को झूठा साबित कर दिया। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है। वो सन्यासी रोता हुआ अपने नारायण के चरणों पे बारंबार प्रणाम कर रहा है, विश्वास नहीं हो रहा। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी साधना सफल हो गई। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछ ही डाला, भगवान आपने तो कहा था जितने वृक्ष के पत्ते हैं उतने जन्मों की साधना के बाद आप इन्हें दर्शन देंगे, आप तो इसी जन्म में इसी क्षण पे आ गए। नारायण बोले ये सत्य है, कर्मों के अनुसार और जिस प्रकार से इनकी भक्ति चल रही थी, जिस प्रकार से इनकी साधना चल रही थी, उसके हिसाब से उसकी गणना के अनुसार इनको मैंने दर्शन तो देने थे हजारों जन्मों की कठोर तपस्या के बाद, लेकिन जब तुमने इनको बोला कि मैं इतने कठोर तपस्या के बाद इनको दर्शन दूंगा, वो एकदम घबराए नहीं, प्रसन्न हो गए। उनके मन में भक्ति बढ़ गई, उनके मन में मेरे लिए प्यार बढ़ गया, उनका जो प्रेम था उसने सारे कर्मों को नाश कर दिया, सारे कर्मों को धो दिया, एकदम से उनको मेरे दर्शन के लायक बना दिया। विचार करना होगा आपको, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। परमात्मा को आपकी कठोर तपस्या नहीं चाहिए। भगवान ये नहीं चाह रहे हैं कि आप भूखे प्यासे रहो, व्रत रखो, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते रहो। भगवान तो केवल प्रेम चाहते हैं, वो कुछ नहीं, केवल प्रेम। और जिस दिन हृदय में ऐसा प्रेम पनप जाए परमात्मा के लिए, उसको भक्ति कहा गया है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों घंटों बैठ के मंत्रों का जाप कर रहे हो, चालीसाएं पढ़ रहे हो, स्तुतियां कर रहे हो परमात्मा की, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हो। भक्ति तो केवल प्रेम है। जब प्रेम संसार से हट के परमात्मा पे जाके लग जाए, जब प्रेम आपका केवल परमात्मा पे चला जाए, हर जगह आपको वही परमात्मा नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि आप परमात्मा की तलाश में है, क्योंकि हर पल हर क्षण आपके हृदय में केवल एक ही गूंज है, वो ये कि परमात्मा मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे नारायण चाहिए, मुझे भगवत चाहिए। विचार कीजिएगा, प्रेम जब प्रेम आता है उसके साथ कई गुण और आ जाते हैं, करुणा, क्षमा, सहन शक्ति, ज्ञान, सब कुछ अपने आप आ जाता है। माता शबरी को बताया गया था कि एक बार राम यहां से गुजरेंगे, आपकी कुटिया में आएंगे। कोई उन्हें तारीख नहीं बताई गई थी, कोई तिथि नहीं दी गई थी उनको। कोई माता शबरी इस विश्वास के साथ रोज सुबह उठ के अपने घर की बुहारी देती, अपनी कुटिया को साफ रखती, वन में जाके खट्टे मीठे फल तोड़ के लाती, क्या रहती, क्या पता आज मेरे राम मेरी कुटिया में आ जाए। इतिहास साक्षी है, भगवान राम वहां पर आए, उन्होंने माता शबरी के हाथ से बेर खाए, वो भी जूठे बेर। माता शबरी ने एक एक बेर को खाकर देखा, खट्टा तो नहीं है कि कड़वा तो नहीं है, मीठा होना चाहिए मेरे आराध्य देव के लिए। वो प्रेम था। मीराबाई परमात्मा कृष्ण के प्रेम में डूब गई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गली गली हरिगुण गाने लगी, विष का प्याला पी लिया, सांपों की माला गले में डाल ली, कुछ नहीं है उनको पता लगा, क्योंकि उनका ध्यान केवल आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के ऊपर था। हमारे इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में हजारों कथाएं हैं ऐसी कि लोगों ने प्रेम से केवल परमात्मा को पाया है। ध्यान रहे, परमात्मा को केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। निस्वार्थ प्रेम, अंग्रेजी में बोलते हैं अनकंडीशनल लव। स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। आपको भी दर्शन हो सकते हैं, हमारे को भी दर्शन हो सकते हैं, अगर हमारा मन प्रेम से भर जाए, अगर हम केवल और केवल और केवल हर क्षण केवल अपने आराध्य परमात्मा भगवान ईश्वर जिसमें आपकी आस्था हो उसमें अपने मन को केंद्रित रखें और प्रेम को पनप देते हैं। जय साईं राम।